प्लैनेट्स 9 मंथ वाइज कैसे काम करते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका अ फेमस एस्ट्रोलॉजर से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगी। आप हैं धार्मिक श्री, फेस रीडिंग गोल्ड मेडलिस्ट, हॉरोस्कोप गोल्ड मेडलिस्ट, पामेस्ट्री भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मीन्स ही इज ऑलराउंडर इन दिस फील्ड। धार्मिक श्री, आप थोड़ा सा अपने बारे में लिसनर्स को बताएं जिससे लोगों को आपके बारे में और पता चले।
हरे कृष्णा, माई सेल्फ धार्मिक श्री, नमस्कार टू एवरीवन, थैंक यू सो मच टू शिवानी एंड ऑल ऑडियंस हु इज लिसनिंग आवर पॉडकास्ट। सो माई सेल्फ धार्मिक श्री, आई एम अ एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड। इन द एस्ट्रोलॉजी वी आर डूइंग फेस रीडिंग, होरोस्कोप रीडिंग एंड पामिस्ट्री विथ ऑल टाइप ऑफ वैदिक स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। And as part of spiritual guide, we are like spreading the all the gyan from the Vedas and from the ancient texts, whatever the grantha said. So, पिछले 300 साल से हमारा ये 13वां generation है जो आध्यात्मिक ज्ञान और ज्योतिष की बातें कर रहा है और लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचा रहा है। And yes, we are also giving our weekly, daily and monthly horoscope to Surtis, जो एक बहुत मीडिया हाउस है, अच्छा मीडिया हाउस है, दिव्य भास्कर, पुणे टाइम्स एंड अहमदाबाद लाइव्स। तो बस ऐसा हमारा जर्नी है।
अब धार्मिक श्री, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, और स्पिरिचुअलिटी में आपका आगे का और क्या पर्पस है?
Definitely. Nice question. बहुत लोग पूछते हैं कि ये सफलता कैसे मिला, पर ये जर्नी बहुत कम लोग पूछते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तो जैसे हम 4 साल के थे तब से पिताजी के, जो हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वो एक बहुत हाईली स्पिरिचुअल ब्राह्मीन फैमिली में हुआ। पिताजी भी एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति एवं एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, कि लोग उनको गुजराती में कहते हैं कि मोडू जोई ने केवा वाला महाराज। तो मतलब हम पहले ही एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिकता को छोटे से तब से प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर धीरे धीरे अगर हमारा पर्सनली ग्रोथ मतलब हम देखते जाए, तो जैसे कभी छोटे थे तो कोई मतलब मूवी सीरीज ये सब, और जैसे बहुत बार हमने देखा है कि कोई शोज ये वगैरह देखते हैं, तो बहुत बार हमने प्रिडिक्शंस किया और बात वहाँ आकर रुक रही थी। फिर जैसे हमारे फैमिली फ्रेंड्स में हो, किसी के हेल्प पे हो, तो एक जैसे आध्यात्मिकता तो हो ही रहा था, पर एट द एज मतलब अर्ली एज जैसे 10-12 साल 15 साल से ही कोई प्रिडिक्शन का तौर अंदर से चल रहा था। धीरे धीरे जाकर डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी हुआ, बैचलर इन एस्ट्रोलॉजी हुआ, राइट नाउ आई एम डूइंग PhD इन प्लैनेटरी सिस्टम। तो एक ज्ञान की बात हो गई। दूसरा जैसे शिव और शक्ति का समन्वय एस्ट्रोलॉजी होता है, तो शिव मतलब नॉलेज, PhD कर रहे हैं, और शक्ति के मतलब कि इसके लिए बहुत मतलब विपश्यना जैसे ध्यान किए, हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार हमें जो आध्यात्मिक रोज गायत्री संध्या करना रहता है वो किया। तो कहीं पे अंतर प्रेरणा, अंतर स्प्रोणा ऐसी निकल रही है कि व्यक्ति का फेस देखते हैं और उनके सिचुएशंस का, उनके बातों का, उनके विचारों का, और वो क्या करना चाहते हैं, ऐसी बातों का अंदर से ही मनोमंथन निकल रहा है। और हम कह सकते हैं कि बस ये कुछ हमने खुद का शून्यता प्राप्त करने का प्रयास किया, तो लोगों का अंदर का क्या है वो दिखने लगा। मतलब ये एक बहुत सहज प्रोसेस है कि जैसे आध्यात्मिकता और अंतर्ज्ञान का आंशिक वृद्धि होता है, तो आपका सिक्स सेंस, या आप कह सकते हो कि आपका और जो चक्रस है वो और एक्टिव होते हैं, कि आप इजीली लोगों को स्कैन फ्रॉम इनर साइड कर सकते हो। तो पिछले 7 साल से तो मतलब बहुत भगवान ने रिस्पेक्ट भी दिया, लोगों का प्यार भी इतना मिला, और मेनली कि रिजल्ट मिलता है तो हमें भी इतना आनंद होता है। तो दिस इज अवर जर्नी।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सी वुमेन्स है जो जानना चाहती हैं कि अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर ने ऐसा कोई इश्यू नहीं बताया, लेकिन फिर भी कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी इस मैटर में हेल्प कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे, आप इसके बारे में तो बताएं।
यस डेफिनेटली, हमें पता है, तो जैसे हमारे पास 100 से 150 केस जो सीरियस केस के जिसको संतति नहीं हो रहा है, मिनिमम जिसका रेशियो होता है 4-5 साल हो गया हो और फिर भी प्रयास का एफर्ट का 2-3 साल हो गया और फिर भी नहीं हो रहा है, तो 100 में से 80% हमारे पास ऐसे ही कपल आते हैं कि मतलब उनका कोई फिजिकली या डॉक्टरी के क्षेत्र में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी नहीं हो रहा। तो हम तो मतलब कहते भी है और हम जानते भी है कि बच्चों का या संतति तो होना उसमें पूर्व कर्म बहुत निश्चिंत है और पूर्व कर्म का जो संयोग है वही कुंडली है। तो कुंडली के माध्यम से जिसमें 5वां स्थान होता है होरोस्कोप में माता का एवं पिता का, पुरुष का एवं स्त्री का, 5वां स्थान संतति दिखाता है और यही स्थान पूर्व जन्म का है। तो मतलब इसी वजह से जब 5वें स्थान में कोई अनिष्ट ग्रह होते हैं, राहु केतु या शनि मंगल या नीच का सूर्य जैसे, तो ऐसे कि सब अच्छा है फिर भी संतति नहीं हो रही, ऐसे 5वें स्थान में जब खराब ग्रह, एक ये इन जनरल फिनोमिना है, बाकी तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली बहुत इंडिविजुअली डेप्थ ऑफ इंट्रोस्पेक्शन के साथ ही हम कह सकते हैं, पर हाँ निश्चिंत स्वरूप से कि हम जैसे 100 कुंडली में प्रयास करते हैं तो उसमें से 3-4 साल की हमारी प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में 80% हमें सक्सेस बच्चों में लोगों को प्राप्ति में हम दे सकते हैं, तो 5वें स्थान दोनों माता पिता को इन जनरल उसके मंत्र हम दे सकते हैं। इन जनरल ज्यादा के लिए तो उनका कुंडली डिस्कशन करना पड़ेगा। और एक चीज होता है षोडश वर्ग चार्ट, उसमें से एक चार्ट होता है होरोस्कोप में जो सप्तमांश, और सप्तमांश चार्ट सिर्फ बच्चों के लिए दिखाता है। तो इसमें टोटल मतलब इसको ठीक करने के लिए पूर्व कर्मों को टोटल 8 फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं। पर हाँ जिसको ज्यादा समय नहीं हुआ या तो जो अभी प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ 5-6 महीना ही हुआ है और नहीं हो रहा है, तो इन जनरल 1-8 साल तक वो माता का और पिता का दोनों के पंचमेश मतलब 5वें स्थान में जो राशि है उसके ऑनर ग्रह के जाप मॉर्निंग में 9-9 मिनट करे तो मतलब संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर इंडिविजुअली जाना होगा। तो डेफिनेटली होरोस्कोप मतलब हमने तो हमारे पास रिजल्टों का डगला है कि जिसके माध्यम से ही हम एस्ट्रोलॉजी में भगवान ने हमें खींच लिया, तो डेफिनेटली इट इज वर्थ। 5th हाउस के ऑनर के जो पंचमेश के मंत्र, पंचमेश का दान और पंचमेश की पूजा करनी चाहिए कि जिसके माध्यम से अगर छोटे कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सकते।
तो अगर जैसे आप कोई मंत्र बताना चाहें तो वो क्या मंत्र है जो सबके लिए मींस जो सब हर कोई उसे कर सके?
हाँ तो ये मंत्र बड़ा है तो इस पे बोले उससे अच्छा कि आप जैसे संतान गोपाल मंत्र यूट्यूब पे करेंगे ना तो ये कृष्ण भगवान का मंत्र है, एक ये कर सकते। उसके बाद जीव मतलब संतति का कारक भी बृहस्पति है तो एक बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः, ये और एक संतान गोपाल मंत्र, ये दोनों मंत्र माता को और पिता को कृष्ण की पूजा करके करने चाहिए। कब? जब इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम हो रहा है तो, बाकी अगर ज्यादा कुछ है तो कुंडली में हमें बहुत कुछ करना पड़ता।
क्या हम दान, जैसे अगर कुछ दान होता है तो क्या दान कर सकते हैं, उससे भी क्या इफेक्ट पड़ता है?
हाँ तो जैसे अपने दान का क्वेश्चन पूछा तो मतलब दो ही चीज इसमें, एक तो गुरु है जो संतति का कारक भी है तो मतलब उसके रिलेटेड आप एवरेज जनरल गुरु येलो चीज येलो कलर का है, ज्ञान का है बच्चों को कन्याओं को दान देने के लिए, विजडम का शिक्षक किसी की फीस भरने का, ये सब मतलब जो ज्ञान है ऋषि परंपरा है विद्या है ग्लोबलाइजेशन व्यवहार है, ऐसा कोई दान इन जनरल स्वरूप में आप कर सकते हो। बाकी मेनली पंचमेश जो इंडिविजुअल होता है हर एक की कुंडली में अलग होता है, तो जो पंचमेश है उसका जो ऑनर ग्रह है वो पीड़ित है कि नहीं वो देखकर उसका दान करना चाहिए। बाकी इन जनरल जैसे कोई भी येल्लो चीज या तो हम कह सकते कोई बच्चों को छोटे बच्चों को येल्लो कपड़े या तो हम कह सकते चने की दाल या तो जैसे स्टेशनरी या तो कोई भी एजुकेशन की प्रोडक्ट टू द किड्स जो गुरु के तत्व में जो भी गुरु आकाश तत्व का स्वामी है, तो मतलब जो भी स्कूलिंग में या फीस में ये सब चीजों का जो बच्चों के एजुकेशन के लिए ज्ञान के लिए शिक्षण के लिए कार्य करता है ऐसी चीजों का ध्यान कर सकते हैं, पर ये एक इन जनरल उपचार है, बाकी इंडिविजुअली जाना चाहिए व्यक्ति का कुंडली।
अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में कंसीव करने के लिए क्या सही टाइम है और क्या सही दिन होना चाहिए? अगर है तो कौन सा सही समय है और कौन सा दिन सही है?
ऐसा ही, तो जैसे प्रेगनेंसी में एक तो अच्छे दिन, इन जनरल अच्छे दिन वार में अगर देखे तो सोमवार, मंडे, बुधवार, वेनसडे, गुरुवार, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये चार दिन अच्छे माने जाते हैं। अभी हम टेक्निकली देखे तो स्त्रियों के पीरियड का जो पहला दिन है वहां से लेकर जैसे इंटरकोर्स के लिए जो टाइम है सबसे अच्छा 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन, 15वां और 16वां दिन। अगर 10वें दिन पे इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी रहता है तो बच्चा प्रॉस्परस होता है, 12वें दिन में रहता है तो बच्चा हम्बल रहता है, 14वें दिन में होली चाइल्ड पवित्र बच्चा होता है, 15वें दिन में रिच प्रॉस्परस होता है, पैसे वाला होता है, 16वें दिन में बच्चा जीनियस होता है। और अगर अच्छे नक्षत्र इंटरकोर्स के लिए और सेम यही नक्षत्र बच्चे का जन्म हो इसके लिए अच्छे है, जैसे रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, हस्त, कनिष्ठा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर साढ़ा और उत्तर भाद्रा, ये इतने नक्षत्र अच्छे है, ये दिन अच्छे है और जो हमने बताया ये वार अच्छे, तो इसमें से हम जितना संयोग कर पाए वो कर सकते हैं। और दिन का मतलब अगर संबंध के लिए टाइम दिन का या दोपहर का, ये दो टाइम अच्छे हैं। दोपहर का तो 1 से लेकर 5 बजे, या तो मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का टाइम भी इंटरकोर्स के लिए या मतलब हम बच्चा कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम।
अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है और कैसी क्वालिटीज बच्चे में डेवलप होती है, ये सारी क्वालिटीज हमारे बच्चे में आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
एक तो चीज कि सभी प्लैनेट उसमें से जो मेन 7 ग्रह है, शुक्र, मंगल, गुरु, सूर्य, चंद्र, शनि और बुध, ये 7ों ग्रहों का प्रभाव रहता है। 7ों ग्रह के अलग अलग तत्व है, 7ों ग्रह के अलग अलग स्वभाव है और अलग अलग हेल्थ पे भी वो असर करता है। तो सभी ग्रहों का राहु केतु को छोड़कर जन्म से पहले तो हर एक मंथ वाइज हम वो ग्रहों पर पर्टिकुलरली हम ध्यान दे सकते हैं कि जैसे सूर्य हो गया प्रतापी है, साहस है, राजा है, धर्म है, शनि हो गया न्यायाधीश है, कर्म है, बुध हो गया बुद्धि है, विद्या है, व्यापार है, शुक्र हो गया श्रृंगार है, ब्यूटिफिकेशन है, रोमांस है। तो ऐसे हर एक ग्रह का एक मतलब बहुत डेप्थ ऑफ कैरेक्टर होता है, तो हमें वो इंडिविजुअल मंथ वाइज उसका ख्याल, उसका ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हमारा बच्चा सर्वगुण संपन्न 7ों ग्रहों के गुण धर्म लेकर पैदा हो।
जी, तो इसके लिए फर्स्ट मंथ में कौन सा प्लैनेट अपना काम करता है?
हाँ, जैसे फर्स्ट मंथ में जो स्पर्म होता है वो मिश्र लिक्विड फॉर्म में ही होता है, जब प्रेगनेंसी होता है तो मतलब वो जल तत्व का कारक है, तब जल प्रकृति में बच्चा होता है और उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव शुक्र ग्रह का प्रभाव पड़ता है। और शुक्र जो है उसका स्वभाव हम कह सकते हैं कि वो सुगंध है, शुक्र डेकोरेशन है, शुक्र श्रृंगार है, शुक्र रोमांस है, शुक्र प्रेम है, शुक्र गुप्त अंगों का कारक है, शुक्र हम कह सकते हैं भोग का कारक है, तो ये चीजों पे उसका प्रभाव रहता है और शुक्र का पहले मंथ।
और ऐसे कौन से श्लोक हैं जो फर्स्ट मंथ में हमें पढ़ने चाहिए?
जैसे शुक्र के लिए हम श्लोक तो जरूर बताएंगे, पर उसके पहले शुक्र को सब अच्छी चीज श्रृंगार, डेकोरेशन, ब्यूटिफिकेशन पसंद है, तो ये समय में माता पिता को पूजा हाउस है, जो पूजा घर है उसका साफ सफाई, मंदिर का साफ सफाई, और पूरा बेडरूम बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए, जो एक बच्चे पर भी उसका प्रभाव रहेगा। और मंत्र का बात आपने पूछा, तो शुक्र के अनेक मंत्र है, शुक्र चालीसा भी है, उसके वैदिक पौराणिक शास्त्रोक्त मंत्र है। पर मतलब हम एक अगर कोई छोटा बीज मंत्र कहे तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, या तो ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं।
तो पहले महीने में हम क्या दान कर सकते हैं?
शुक्र को जो चीज पसंद है, जो चीज सफेद से नजदीक है, ऐसी चीज जैसे चावल, चीनी, गेहूं का आटा, चांदी, ब्राह्मण को दक्षिणा, और अगर आप बहुत अच्छे फैमिली से हैं तो पूर्व जन्म में राजा पहले मंथ में हीरो हीरो का दान करते थे, क्योंकि शुक्र मतलब डायमंड है, तो आप कर सकते हो डायमंड का भी दान।
जी, जैसे आपने पहले श्लोक और मंत्र के बारे में बताया, तो क्या मंत्र और वो श्लोक करने का कुछ सही समय होता है?
हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आप मॉर्निंग में आपका स्नान होता है स्त्री या पुरुष का, तो उसके बाद चेतन अवस्था अच्छा होता है, ऑरा भी बहुत अच्छा होता है। तो मॉर्निंग में 10 बजे से पहले, मॉर्निंग 4 AM to 10 AM बिटवीन दिस टाइम स्नान करके तुरंत करना चाहिए, और मिनिमम टाइम प्रेगनेंसी के दौरान ये मंत्रों का 9 मिनट होना चाहिए। ज्यादा आप जितना कर सकते हो आपके बच्चे को फल मिलेगा। तो मॉर्निंग में 10 बजे से पहले स्नान लेकर तुरंत 9 मिनट मिनिमम।
जी, अब धार्मिक श्री, अब जब हमारा इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि फर्स्ट मंथ में हमें क्या श्लोक पढ़ने चाहिए, फर्स्ट मंथ में क्या दान कर सकते हैं, तो अब आप हमें सेकंड मंथ के बारे में भी बताएं, जिससे सारी वुमेन्स को पता चले सेकंड मंथ में कौन सा प्लैनेट अपना काम करता है।
हाँ डेफिनेटली, पर हम सेकेंड मंथ का बताएं उससे पहले एक बात, शुक्र के इष्ट लक्ष्मी जी है, तो बहुत लोगों को क्या है कि जिसको मतलब जिन्होंने वेदों या वेदोक्त परंपरा या आध्यात्मिकता को इतना नहीं जाना, तो वो शायद ज्योतिष को नहीं समझ सकते हैं, और बहुत लोग उससे थोड़े दूर है, सिर्फ भक्तिवादी है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, पर ये रास्ता भी है। जैसे शुक्र देव के इष्ट है लक्ष्मी जी, तो इस दौरान जो शुक्र का पूजा नहीं करना चाहते वो लक्ष्मी जी का भी कर सकते हैं, और यदा कोई व्यक्ति दोनों का पूजा कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ है। और लक्ष्मी जी के लिए उनके कोई भी बीज मंत्र या लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी जी के गुणगान आप कर सकते हो। दूसरे मंत्र के लिए आपका क्वेश्चन है कि
जैसे हमने फर्स्ट मंथ का जाना, तो अब सेकंड मंथ में भी हम जानना चाहेंगे कि कौन सा प्लैनेट अपना काम करता है।
बराबर, दूसरे मंथ में क्या होता है, साइंटिफिकली जो भ्रूण होता है, जो वॉम में गर्भ होता है, वो पानी से धीरे धीरे ठोस स्वरूप में घन स्वरूप में जाना शुरू करता है, तो ये समय पे मंगल का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। मंगल जो हड्डियों का रक्त का कारक है, अगर बॉडी में बात करें तो हड्डियां नहीं बनती है, पर हड्डी के तत्वों का निर्माण होता है, रक्त के तत्वों का निर्माण होता है, और यही मंगल बच्चों पे साहस, पराक्रम और शौर्य, एक्टिविज्म, गुस्सा, ये सब चीजों का प्रभाव दूसरे मंथ से प्रारंभ होता
जी, सेकेंड मंथ में अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए और उन मंत्र को पढ़ने का सही समय क्या है?
है। तो जैसे समय तो सबके लिए सेम है, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले नहा धो के तुरंत, क्वेश्चन
जी
है मंत्र कौन सा करना चाहिए। तो
जी
मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इसके साथ एक एडवाइस कि जैसे मंगल अग्नि तत्व का कारक है, तो ये दौरान अग्नि का प्रज्वल होना स्त्री के अंदर होता है, तो ये समय पे ज्यादा तीखा चटपटा या ज्यादा तला हुआ, ज्यादा अग्नि तत्व वाला फूड नहीं खाना।
जी तो अब हम इस मंथ में क्या दान कर सकते हैं?
हाँ, दान तो जैसे मंगल लाल रंग का है, तो आप कोई भी, जैसे गुड़ हो गया, ताम्र हो गया, सिंदूर हो गया, लाल वस्त्र हो गया, लाल फल, ऐसी चीजों का दान आप कर सकते हैं। उससे पहले एक बात रह गया कि मंगल के इष्ट देव कौन है, तो मंगल के इष्ट देव है हनुमान। तो ये समय पे जैसे मंगल का मंत्र पैरेलली आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, या तो राइट हैंड में ताम्र का कड़ा स्त्रियों को पहनना चाहिए।
अब आप हमें बताइए कि तीसरे महीने में कौन सा प्लैनेट अपना काम करता है?
हाँ, तीसरे महीने में जो भ्रूण होता है उसके अंग बनने का शुरुआत होता है। जैसे अंदर से उसका जो बेस ऑफ एवरी ऑर्गन शुरुआत होता है, हाथ पैर उंगलियां, ये सब चीज, और ये सब चीजों का व्यक्ति के पूरे शरीर का कारक है, ज्योतिषाणाम कारकाणाम बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह जो संतति का भी कारक है। तो तीसरे मंथ में बृहस्पति, जिसके इष्ट भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु हैं, बृहस्पति तीसरे मंथ के लिए जवाबदार होता है।
और इस टाइम पे हमें कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए? और इस समय हमें कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए?
बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र का हम जाप कर सकते हैं, या तो उसके पौराणिक मंत्र, उसके वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और उसके इष्ट जो विष्णु है या तो ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी और विष्णु कृष्ण की भी आराधना मंत्र वगैरह आप यही मंत्र में कर सकते हो।
जी, और इस समय हम दान क्या कर सकते हैं?
गुरु का कैसा स्वभाव है, गुरु कर्म का, धर्म का, दर्शन का, ज्ञान का, संतान का, ये सब चीजों का कारक है। तो ऐसे ही रिलेटेड मतलब, और उनका रंग है येलो तत्व का कारक है बृहस्पति, तो कोई भी पीले वस्त्र, पपइये का दान, बेसन का दान, चने की दाल का दान, ब्राह्मणों को दान, गुरुओं को दान, ऐसी चीजों का दान हम कर सकते हैं।
अगर आप इसका छोटा सा कंक्लूजन बताएं तो वो क्या है?
हाँ, जैसे पहले 3 मंथ के लिए अनुक्रमिक शुक्र मंगल और गुरु जवाबदार है, तो जितना हो सके मॉर्निंग में पहले मंथ में शुक्र, दूसरे मंथ में मंगल और तीसरे मंथ में गुरु का मंत्र जाप कीजिए। पहले मंथ में मंदिर को साफ सफाई, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना, दूसरे मंथ में लाल रंग का कोई चीज, लाल वस्त्र, लाल फल, ऐसा सब दान दो। तीसरे मंथ में गुरु को, ज्ञानी को, ब्राह्मीन को दान दो, और तीनों का साथ साथ में जो इष्ट है अनुक्रमित, पहले का लक्ष्मी जी, दूसरे मंथ का हनुमान जी और तीसरे मंथ का ब्रह्मा और विष्णु, तो ये तीनों देव का अनुक्रमित मंथों में आप आराधना कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत कुछ, आपके बालक के स्वभाव में बहुत कुछ गुण, कुछ संस्कार, और ये ग्रहों के तत्वों के अनुरूप जो ज्ञान है उसका वृद्धि करेगा।
थैंक यू सो मच धार्मिक श्री, यहाँ आज सभी लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू शिवानी जी। तो जैसे व्यास जी ने गणपति को, और जैसे भागवतम सुनाते थे, ऐसे ही आप गणपति हो और हम व्यास जी, तो ऐसे ही ये श्रोता गण कुछ सुनते रहे, और मेरे
जी
हिसाब से तो सुने उससे ज्यादा, बस थोड़ा थोड़ा उसका कुछ पालन करे, तो पूर्व के जैसे हम वापिस दिव्य बालकों का सर्जन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।
जी आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट ट्रेमेस्टर के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे कि 4, 5, 6 मंथ में कौन से प्लैनेट्स हैं जो काम करते हैं, क्या करना चाहिए, वही प्रोसेस के बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी विथ नंबर, आप धार्मिक श्री जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल पॉडकास्ट में आप माँ प्रन्योर नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और नए अंदाज में और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज कैरिंग, राइट? थैंक यू सो मच।
हरी बोल।
Hey everyone, I am Shivani Singhvi, digital creator, podcaster, founder of Mapreneur and your host. आज फिर से हमारे साथ है धार्मिक श्री। आज हम 4, 5, 6 मंथ में कौन से प्लैनेट्स काम करते हैं, क्या एक्टिविटी इस टाइम करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। धार्मिक श्री फेस रीडिंग गोल्ड मेडलिस्ट, हॉरोस्कोप गोल्ड मेडलिस्ट एंड पामेस्ट्री भी करते हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो धार्मिक श्री, आपका फिर से वेलकम है हमारे मापरेन्योर चैनल पे।
नमस्कार, नमस्कार।
तो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में आपने कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की थी। अब हम आगे सेकेंड ट्राइमेस्टर 4, 5, 6 मंथ के बारे में बात करेंगे।
हमारी सारी ऑडियंस को हमारा जय अम्बे, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। एंड हमें अपने मतलब यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए फिर से पॉडकास्ट बनाने के लिए बताया, उसके लिए आपको बहुत थैंक यू सो मच। और हमारा पहला पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा रहा, तो अभी हम उसके पार्ट 2 ट्राइमेस्टर जीवन के, किसी भी औरत के जीवन का एक अनहद ब्यूटीफुल मोमेंट्स, वो 9 मंथ जो एक उसका सुवर्ण काल, उसका एक गोल्डन युग, जिज्ञासा वृत्ति और प्रेम और केयर से भरा हुआ, तो उसके हम बात करेंगे। तो मेरा भावना है कि बात करें उससे पहले हम आपको एक गर्भ संस्कार का स्टोरी सुनाना चाहते हैं कि व्हाट इज गर्भ संस्कार। तो अगर शिवानी जी हमें अनुमति दे तो हम एक छोटा स्टोरी से फिर आगे बढ़ते हैं बातों में, ठीक है?
जी जी जी।
हरि बोल। सो रियल में प्रैक्टिकली साइंटिफिकली वैज्ञानिक पद्धति से ये गर्भ संस्कार कैसे वर्क करता है, तो एक स्टोरी है। अमेरिका का एक डाल्टन सिटी था, काल मैं कैल्डी नाम का एक 8 साल का बच्चा था। उन्होंने एक टॉमी किड नामक युवक को शूट कर दिया, उसको मार दिया। कोर्ट में केस चला, वो गुनेगार साबित हो गए। बट इतना कम उम्र का बच्चा था कि कोर्ट ने बताया कि ये बच्चे के मानसिक परिस्थिति को हमें चेक करना होगा। पुलिस, डॉक्टर, प्रशासन और साइकोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च किया। तो रिसर्च में ऐसा बाहर निकला कि जब वो बालक गर्भ में था तब उसकी माता ने बहुत क्रूर और बहुत एक्शंस वाली, बहुत मिस्टीरियस, बहुत सीक्रेटिव, बहुत हिंसात्मक मूवीज और रीडिंग्स, मतलब ऐसी स्टोरीज पढ़ी थी कि उसका इफेक्ट वो बच्चे के मतलब जब गर्भ में था उस पे रहा, और उसके ही प्रभाव से बालक में 8 साल की एज में किसी को शूट करने का भी उसको अंतर प्रेरणा मिला। तो दिस इज गर्भ संस्कार, कि जिससे आप एक राक्षस भी पैदा कर सकते हो, और दिस इज गर्भ संस्कार जिससे आप एक साहसी, एक वीर्यवान, एक तेजस्वी राजा तुल्य और भगवान जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति भी पैदा कर सकते हो।
अगर आप पूरा गर्भ संस्कार का एपिसोड या जितनी नॉलेज है आप सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हम पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए फॉलो जरूर करें। इसका पूरा सीरीज होगा जिससे आपको हर डिटेल इसके बारे में पता चलेगी। तो चलिए हम अपने इसी टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले धार्मिक श्री जी, 4th मंथ में कौन सा प्लैनेट काम करता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए।
4th मंथ जब हम कह सकते हैं बालक के सूर्य के कारक तत्व के तत्वों का विकास होता है, तो प्लेनेट सन जो आत्मा का प्रतीक है, जो तेज का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, राजा का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, फिलोसॉफी का प्रतीक है, लोक चाहना का, कॉन्फिडेंट का, ये सब सूर्य का तत्व ऐसा है, तो ये सब तत्वों का ज्यादा उस पर इफेक्ट रहता है कि जो बालक में कभी हम कह सकते हैं कि वो एक साहस, पराक्रम और एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर जो चौथे मंथ में डेवलप होना या उसके लिए जो प्रभावित तत्व है उसका डेवलप होना शुरू हो।
और इस टाइम ऐसे कौन से श्लोक हैं, मंत्रास हैं जो पढ़ने चाहिए
सूर्य के लिए? आमतौर पर लोग जो सूर्य को जल अर्पण करते हैं, माताएं बहने, उसको ये करना चाहिए। दूसरा चीज, गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। कैसे करना है? तो मन में जीभ नहीं हिले, आवाज भी नहीं निकले, बस मन में आप गायत्री मंत्र का विचार करो। कितना गायत्री मंत्र? तो डेली मिनिमम 108। और कोई अच्छी लेडीज है जिसमें और धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का प्रगति है, तो उसको 1008 गायत्री मंत्र फोर्थ मंथ में करने चाहिए। और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के स्वरूप में ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप 9 मिनट मॉर्निंग में 10 बजे से पहले पूरे दिन 30 दिन करना चाहिए।
गायत्री मंत्र का जाप 1008 बार करने से क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएं तो?
गायत्री वो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति तो एनर्जी, एनर्जी ये पूरा साइंस, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जियों पे बना है। तो गायत्री मंत्र के उच्चार से जो ये यूनिवर्स एक साउंड फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, तो इससे गर्भ का, माता का और बच्चे का जो यूनिवर्स के साथ एक संतुलन होना चाहिए एनर्जियों के स्वरूप में, और उन्होंने जो उद्देश्य के लिए जन्म लिया है उसको और परिपक्वता मिलती है।
जी, तो ये हम कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं या जरूरी है कि एक आप आसन लगा के ही बैठे?
हाँ, कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर पहला, अगर पहला प्रायोरिटी है कि आप मंदिर में, और मंदिर भी ऐसा कि पूर्व पश्चिम में बैठे। मंदिर पे नहीं बैठ सकते आप, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बेड पे सोना नहीं, बैठे बैठे या तो बेड पर या तो चेयर पर आपको पूर्व पश्चिम में, या तो पूर्व में मुखारविंद रखकर या तो पश्चिम में, पर मोस्ट प्रॉब्ली पूर्व में मुखारविंद रखकर आप कर सकते हैं।
तो अब आप हमें बताइए कि जो ये मंत्र आपने बताया, तो इसे करने का सही टाइम क्या है?
मॉर्निंग के 10 बजे से पहले, और सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग से 4 से 6 का। बाकी आप जब नहा धो के फ्रेशमेंट हो, जब आपका दिमाग उलझनों में नहीं गिरा हो, नाह के तुरंत पूजा करना चाहिए।
तो इसके इष्ट देव कौन है?
सूर्य के इष्ट देव आमतौर पर कृष्ण जी या तो विष्णु के, मतलब सूर्य के इष्ट है, तो आप साथ में कृष्ण का, विष्णु का भी मन स्मरण कर सकते हैं।
अब हम इस समय क्या दान कर सकते हैं?
फोर्थ मंथ जो सूर्य का मंथ है, पहले तो आप सूर्य को ताम्र के मतलब जो एक वासन होता है, ताम्र का जो पात्र होता है, उससे आप मॉर्निंग में जल चढ़ाए, 12 सूर्य देव के नाम लो। दान में आप गुड़ का दान, गेहूं का दान, ताम्र का दान, सिंदूर का दान, कोई भी लाल वस्त्र स्त्रियों को दे सकते हो, कोई पिंक वस्त्र स्त्रियों को दे सकते हो, ऐसे कोई कार्य आप दान के स्वरूप में हर रविवार के दिन मिनिमम 4 दिन, और कोई भगवान को किसी ने कृपा दिया है तो रोज शाम को या मॉर्निंग में ऐसा थोड़ा दान कर सकते।
फोर्थ मंथ में श्लोक बता दिया, दान का बता दिया, मंत्र का बता दिया, तो अब आप हमें बताइए फिफ्थ मंथ में कौन सा प्लैनेट काम करता है?
फिफ्थ मंथ में चंद्र, प्लैनेट मून काम करता है।
और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या इफेक्ट्स बच्चे पे होते हैं?
तो हम कह सकते हैं चंद्र जिसका स्वभाव मन, माता, मिल्कत, मिल्कत से भी ज्यादा चंद्र मन और माता का, और सौम्यता का, श्रृंगार का, दिखावा का कारक है, तो इसी समय पे मतलब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो अस्थि मज्जा हड्डियों के विकास के बाद और थोड़े अंगों का आकार प्रकार ये सब डिजाइन होता है, बच्चों के कलर का डिजाइन मतलब कलर का डिसीजन होता है, रंग सूत्र का सब चीज होता है, तो इस पे चंद्र का प्रभाव रहता है।
जी, तो इस समय हमें किस तरह के मंत्र श्लोक करने चाहिए?
चंद्र के प्रभावित मंत्र, चंद्र के इष्ट है शिव जी, तो एक तो एस्ट्रोलॉजी के अलावा आप एक जनरल स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कर सकते हो। दूसरा जो चंद्र का एस्ट्रोलॉजिकल मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का 9 मिनट आप जाप कर सकते हो।
और ये मंत्र करने का सही समय क्या है?
मंत्र करने का सही समय, जैसे हमने बताया कि मॉर्निंग में 10 बजे से पहले और मोस्ट प्रॉब्ली मॉर्निंग के 4 से 6 का टाइम, या तो 10 बजे से पहले जब आप उठ रहे हो ये टाइम अच्छा है।
मींस ऐसा कोई पर्टिकुलर वो मैटर नहीं करता है कि आपको इसी समय करना है, आप कभी भी कर सकते हो ऐसा?
ऐसा नहीं, मॉर्निंग का समय आपके स्नान जब आपका मानसिक एवं चित्त शुद्धि होता है तो ये समय श्रेष्ठ रहता है। तो उसमें हाँ। भी 4 से 6 जो ब्रह्म मुहूर्त, 4:30 से 6:30 का ब्रह्म मुहूर्त जब सूर्य का उदय होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और साइंटिफिकली ये दुनिया उसके सबसे पॉजिटिव आयाम में होता है, तो तब कर सकते हो। किसी का लेट उठना रहता है तो फिर उनको 4:30 बजे अराउंड करना, मतलब उनको 10 बजे से पहले कभी भी नहा धो के वो कर सकते हैं।
इस मंथ में हम क्या दान कर सकते हैं?
चंद्र के रिलेटेड चीज, एक तो आप शाम को मतलब हाँ आप डेली चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो। दूसरा चीज कि कॉपर की चीजों से थोड़ा वो ये समय पे 1 महीना दूर रहना चाहिए। तीसरा चीज कि दान में आप कोई चीनी का दान, चांदी का दान, कोई सफेद चीज का दान, कोई घी का दान, दूध या दूध के रिलेटेड बनी कोई चीज का भी आप दान कर सकते हैं।
जी, और 5th मंथ में चंद्र के इष्ट देव कौन है?
इष्ट देव जैसे ही हमने बात कर लिया है शिव जी है। अब शिव का भी जितना स्तुति शिव पुराण का वांचन, शिव शिवलिंग पर जल अभिषेक या रुद्री लघु रुद्री या आदि योगी शिव ने दिए हुए मेडिटेशन के कोई भी आयाम का भी प्रैक्टिस कर सकते हो।
जी धार्मिक श्री जी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने 1st मंथ, 2nd मंथ, 3rd मंथ सब मंथ के बारे में आप अलग इष्ट देव जिनके इष्ट देव है वो इष्ट देव बता रहे हैं, दान बता रहे हैं, श्लोक बता रहे हैं, जैसे 9th मंथ तक आपने किया, अब 9th मंथ में बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती है कि वुमेन ये सब बहुत बार होता है कि नहीं फॉलो कर सकती है, तो जैसे उन्होंने 1st मंथ किया और 2nd मंथ वाला नहीं किया, 3rd मंथ किया, 4th मंथ वाला नहीं किया, ये चीज कर सकते हैं?
हाँ, कि जैसे एक हम कहते हैं कि नहीं करने से अच्छा है कि आप कम या थोड़ा कर सकते हो, मतलब कि पहले मंथ में किया दूसरे मंथ भूल गए तो कोई नहीं, तीसरा मंथ जैसे हमने बात किया होगा कि तीसरे मंथ पे गुरु का प्रभाव है तो फिर वो मतलब आप 3rd मंथ से शुरू कर दो, कोई एक भूल गए वापिस 6th मंथ पे 5वें मंथ पे आ गए तो जैसे आप चंद्र का प्रभाव तो वो करो, जितना जैसे 1 महीने में आपने 30 दिन नहीं किया तो आप 10 दिन कर लो, जितना हो पाए उतना श्रेष्ठ है, आपको जितना अच्छा बच्चा चाहिए उतना आपको करना चाहिए।
मीन्स इसे थोड़ा सा क्लियर होगा कि अगर ये चीज हमारे साथ होती है या अगर हम ये सब कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इश्यू तो नहीं है ना ऐसा?
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एक है कि आपको आपके जीवन में कोई चीजें कभी नहीं कर पाते हो या नहीं करने का मन कब होता है, कि जैसे कि आपके ग्रहमान में धर्म ओर्छा कम है तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज कि कभी आपके जीवन में कोई ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव है, जैसे कि हम पांचवें मंथ का बात कर रहे हैं कि जिसकी कुंडली में चंद्र अच्छा नहीं है तो उसको पांचवें मंथ में आध्यात्मिकता करने का मन नहीं होगा। किसी की कुंडली में तीन चार ग्रह खराब है तो वो तीन चार महीनों में उनको ये ज्योतिष आध्यात्मिकता करने का भगवान अंदर से ये यूनिवर्स अंतर प्रेरणा नहीं देता, तो इसके लिए छोड़ दो ऐसा नहीं। तो जैसे एक तो आपके कोई मतलब आपको जैसे पैरेलली आपको एस्ट्रोलॉजी के स्वरूप में किसी को कंसल्ट करना चाहिए, आप हमको भी कर सकते हैं, आपको कोई और यथा योग्य लगे जिसका इंट्यूशन और नॉलेज है उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। और जो मंथ में आपको धर्म करने का या वो मंथ के रिलेटेड ज्योतिषीय उपचार करने का या गर्भ संस्कार का मंत्र मन नहीं कर रहा है, उसका मतलब कि वो मंथ का जो ग्रह है वो आपके स्त्री के कुंडली में अच्छा नहीं है, तो उसको पहले पांच दिन में उसकी पूजा अर्चना से उसको ठीक कर दोगे तो वो मन अपने आप हो जाएगा। बाकी चीजों में एक्सक्यूज या निमित्त बनाना वो हमारे पूर्व कर्म के अनुरूप ही है, तो जब हमें दो तीन दिन ऐसा लगे कि हमसे नहीं हो रहा है, कंटाला आ रहा है, कुछ और मतलब कुछ चीजें हमें एक्सक्यूज दे रही है, तो उसका समाधान करना चाहिए। गर्भ संस्कार में बहुत बार बहुत ग्रहों का जैसे हमने बात किया कि ये सब आप तो कर सकते हो, पर जो स्त्रियों की कुंडली में सूर्य वीक है, गुरु वीक है, चंद्र वीक है, तो उसके मंथ में उसका जप, उसका तप, उसका अनुष्ठान, उसका पूजा कार्य, उसका दान प्रेरणा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके एक आध्यात्मिक प्रोसेस में से पास होना चाहिए, जिससे उसका चंद्र सूर्य शुक्र मंगल और आत्मस्थित मजबूत और तेजस्वी हो सकते हैं।
अब हम बात करेंगे सिक्स मंथ के बारे में कि सिक्स मंथ में कौन सा प्लैनेट काम करता है।
सिक्स मंथ में जो कर्म का प्राधान्य देव है, हम कहते हैं कि लोगों का ये मॉडर्न युग में कर्म पे ही विश्वास है, तो ऐसे कर्म के कारक देव शनि जिसके इष्ट देव है हनुमान जी या हम कह सकते हैं कि रुद्र, तो शनि देव का प्रभाव ग्रहों के स्वरूप में बालक पे और माता पे रहता है।
इसका क्या इफेक्ट होता है?
शनि इस माह में हम साइंटिफिकली डॉक्टरों की क्षेत्र का बात करें तो छठे मास में शिशु के बालों का विकास होता है, सिर्फ बालों का नहीं, इसके द्वारा नाखून का है ना, जैसे जो शनि से जुड़ी चीजें है, पैर में भी मजबूत जो मजबूती होती है उसका, फिर नाखून, बाल, ये सब चीजों का, बाहरी सतह के अंग जिसको हम नॉर्मली काटते हैं, जिसको उतारते हैं मेल के स्वरूप में, ऐसे अंगों का विकास होता है, तो इस चीजों पे शनि का प्रभाव रहता है। एवं स्वभाव के तौर पे शनि का स्वभाव है लेबर जैसा, मतलब एक एफर्ट, एक कर्मशील व्यक्तित्व, एक कर्मठ व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करने का प्रेरणा जो तत्व देता है वो शनि है। तो कर्म पर नाखून, बालों और बाहरी सतह के अंगों पर इसका प्रभाव रहता है।
जी, तो इस समय हमें क्या मंत्रा, क्या श्लोक करने चाहिए?
हाँ, शनि के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के स्वरूप में, मंत्र के स्वरूप में हमें ओम शम शनेश्वराय नमः, या तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः, ये आइदर दोनों में से कोई एक मंत्र का 9 मिनट जाप कर सकते हो। इसके अलावा शनिवार के दिन कोई शनिदेव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते।
और इस समय हमें क्या दान करना चाहिए?
शनि के रिलेटेड दान, शनि लोहे का कारक है, तो आप हम कह सकते हैं कि कभी आप एक तो कि आप जो स्नान स्त्रिया करती है तो उसमें बिली पत्र डाल के फिर उनको स्नान करना चाहिए। दान का बात करें तो काले तिल, काले उड़द, कोई भी ब्लैक कलर का फल फलाती, लोहा या तो कोई भी ब्लैक कलर के वस्त्रों का दान अब ब्राह्मणों को, गरीबों को और गरीबों में स्पेशली मजदूरों को कर सकते हैं।
जी, इनके इष्ट देव कौन है?
शनि के इष्ट देव हनुमान जी है, हमें हनुमान जी का भक्ति करना चाहिए। और हाँ, एक नेचर के क्षेत्र में 5 पीपल के वृक्ष आपको ये महीने में आप अगर कहीं पे लगा सकते हो तो उसको लगाने चाहिए और उसकी 1 महीने तक रोज देखभाल करनी चाहिए।
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हम मिलेंगे 3rd trimester के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में, 7, 8, 9 month में कौन से प्लैनेट्स काम करते हैं, क्या करना चाहिए, वही प्रोसेस के बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप डायरेक्ट धार्मिक श्री एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। गूगल पॉडकास्ट में आप माँ प्रण्य और नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और नए अंदाज में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
नमस्कार, जय अम्बे, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।
बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच धार्मिक श्री जी।
थैंक यू ऑल।